नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ऐसा आश्वासन स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से सुनना, इससे बड़ा सौभाग्य वो भी कार्तिक के महीने में क्या हो सकता है। अब प्रश्न केवल इतना है, क्या हम तत्वतः भगवान को जानना चाहते हैं? क्या भगवान ने तो यहां पर अपनी ओर से एश्योरेंस दे दिया है, प्रॉमिस, आश्वासन, अपनी ओर से भगवान की बात तो पक्की है। अब हमारी ओर से हम रिश्ता पक्का करता है कि नहीं, वो प्रश्न है। तो पिछली बार हमने ये श्लोक प्रारंभ किया, थोड़े सेशंस लगेंगे, तत्वतः जानना है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, और वो भी उनके जन्म और उनके कर्मों को। तो तत्वतः जानने के लिए हमें कुछ गहराई में जाना होगा। तो आज के हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, पिछले बुधवार से हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। क्या हमने डिस्कस किया था पिछले बुधवार का अर्थ है पिछले सिटिंग में जब हमने, तत्पश्चात कृष्ण जन्म की दिव्यता के पांच पहलू एवं पांच अन्य कारण। हमने अब तक कितने कारण ले लिए हैं, कुछ याद है? जन्म की दिव्यता के, घबराइए मत, बता देंगे आप। और कृष्ण जन्म से संबंधित पांच प्रार्थनाएं हमको, आज तो मुश्किल रहेगा ये सब कुछ डिस्कस कर पाना, जितना हो पाएगा हम प्रयास करेंगे। तो यदि आपको याद है पिछले सिटिंग में हमने आठवें श्लोक से संबंध आज के श्लोक का, भगवान अपने अवतरण के पश्चात क्या करते हैं, भगवान ने परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम इस श्लोक के द्वारा समझाया। तब फिर अर्जुन का ये प्रश्न, और अर्जुन के ही पद चिन्हों पर चलते हुए एक सर्वसाधारण व्यक्ति का प्रश्न कि भगवान ने तो साधुओं के विषय में कह दिया कि उनका परित्राण करने के लिए वो आते हैं और दुष्टों का विनाश करने के लिए वो आते हैं, परंतु जो सर्वसाधारण है हमारी तरह, उनके लिए क्या योजना है भगवान की? तो इसलिए आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि चाहे कोई असाधारण हो, चाहे कोई साधारण हो या सर्वसाधारण हो, व्यक्ति को भगवान के अवतरण का क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, ये इस श्लोक में भगवान ने बता दिया। इसका खुलासा भगवान ने इस श्लोक में कर दिया। अब आपको यदि याद है कि इसी अध्याय के पांचवें श्लोक से आज के श्लोक का संबंध हमने जानने की कोशिश की थी। कौन सा श्लोक पांचवा? थोड़ा बहुत नहीं, श्री भगवान उवाच, इतना तो याद है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। तो क्या संबंध, भगवान ने इस पांचवें श्लोक में अर्जुन से कह दिया कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, बहुत से जन्म होंगे भी, तुम्हें याद नहीं, मुझे सब याद है। तो यदि अर्जुन जीव है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हम भी जीव हैं अर्जुन की तरह, तो हमारे भी बहुनी जन्मानी, हमारे भी बहुत से जन्म हुए होंगे और होंगे अर्जुन की तरह और भगवान की तरह, तब फिर हम में और भगवान में या अर्जुन में और भगवान में क्या अंतर रह गया? आज के श्लोक में भगवान वो अंतर बता रहे हैं कि हालांकि मैं करुणावश अपने अवतरण को जन्म कह रहा हूं, ये भगवान की करुणा है, भगवान को कोई जरूरत नहीं वो शब्द इस्तेमाल करने की, जन्म जन्म ये हमारे संदर्भ में हम कह सकते हैं, परंतु भगवान के संदर्भ में भगवान अवतरित होते हैं, अवतरण और जन्म में अंतर क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं बर्थ एंड मैनिफेस्टेशन। हम लोग जन्म लेते तो रोते हैं ऐसे, भगवान जब जन्मे तो भगवान रोते बिलखते नहीं, अपने पूरे आयुधों के साथ चतुर्भुज रूप में पीतांबर धारण किए हुए, मुकुट धारण किए हुए, सारे आभूषणों को धारण किए हुए, तो भगवान अवतरित हुए और हम लोग जो हैं वो जन्म लेते हैं। ले जाइए बाहर ले जाइए। और भी यदि बच्चे हैं जो सहन नहीं कर पा रहे, और यदि बड़े भी सहन नहीं कर पा रहे तो दरवाजे खुले हैं। तो पिछली बार हमने प्रारंभ किया था, इस श्लोक में भगवान सबसे पहला शब्द जो इस्तेमाल किए हैं जन्म। तो भगवान के जन्म की दिव्यता के विभिन्न कारण, इसलिए हमने कोई नंबर नहीं दिया है इसको, क्योंकि पता नहीं जैसे जैसे मैं और हमारे आचार्यों की टीका और उसकी खोजबीन कर रहा हूं ये श्लोक के ऊपर तैयारी करने के लिए, तो इतने विभिन्न कारण बाहर आ रहे हैं इसलिए नंबर नहीं दे पा रहा हूं मैं कि कोई नंबर फिक्स कर दूं कि कितने कारण हैं भगवान के जन्म की दिव्यता के, इसलिए इसको हमने विभिन्न कारण दे दिया है। और लास्ट में हो सकता है कि हम लोग तो भगवान के कुछ कारणों की गिनती कर पाएंगे, अनगिनत है भगवान के जन्म की दिव्यता के कारण। तो यदि आपको याद है पहला कारण हमने पिछली बार लिया था कि भगवान का जन्म दिव्य क्यों कहा जाएगा। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पहले चार अध्यायों में भगवान के जन्म का विवरण दिया गया है, और शुरुआत होती है जब भूमि देवी ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर याचना करती है कि वो आक्रांत है राक्षसों के प्रकोप के कारण, और रोती बिलखती भूमि देवी गौ माता के रूप में जब ब्रह्मा जी के समक्ष याचना करती है तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को ले जाकर वो भगवान श्री विष्णु के समक्ष जाते हैं, और फिर भगवान विष्णु आश्वासन देते हैं कि हां मैं पृथ्वी का भार नाश करने के लिए अवतरित होऊंगा। तो कौन शिशु है इस संसार का जो इस मिशन के साथ पैदा होता है? पहला कारण हमने ये समझा, विच चाइल्ड ऑफ दिस वर्ल्ड इज बॉर्न विथ अ मिशन टू सेव प्लैनेट अर्थ। फिर दूसरा कारण याद है किसी को? विच चाइल्ड चूजेस हिज पेरेंट्स बिफोर हिज बर्थ। पहले से भगवान ने सब कुछ फिक्स कर लिया कि कौन कहां पर कैसे मुझसे पहले जाकर एडवांस पार्टी जाकर वो तैयारियां कर रखेगा, और फिर भगवान को आमंत्रित किया गया, भगवान अवतरित हुए, उनके माता पिता पहले से ही नियुक्त किए गए थे भगवान द्वारा। तीसरा कारण कि यदि हम इन दो महानुभावों को देखें, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, और न केवल परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी बल्कि जितने दिग्गज श्रीमद् भागवत सुनने के लिए एकत्रित हुए थे गंगा के तट पर, यहां तक कि व्यासदेव जी, नारद, असित, देवल, बड़े बड़े जो तपस्वी अन्य लोकों के सारे एकत्रित हुए थे, और ये सब भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को सुनने के लिए। तो कोई है बच्चा इस संसार का कि उसके जन्म और कर्म को सुनने के लिए इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए? और हमने इस तीसरे कारण में परीक्षित महाराज द्वारा पूछे गए प्रश्नों की चर्चा की थी। तो परीक्षित महाराज किस दशा में भगवान के जन्म और कर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो स्वयं वो चार दिन से कुछ खाए नहीं है, कुछ पिए नहीं। अच्छा, महाभारत में वर्णन है कि जब परीक्षित महाराज को ये श्राप मिला, श्रृंगी ने श्राप दिया, सात दिन में तक्षक नामक सर्प आकर डसेगा और वो कारण तुम्हारे मृत्यु का होगा। ये कथा हम जानते हैं। तो अब जैसे ही ये खबर फैली, क्योंकि पूरे विश्व के सम्राट परीक्षित महाराज, तो जो पूरे विश्व के सम्राट हैं, सात दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है और वो नौजवान थे, तो पूरी पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में ये खबर फैल चुकी थी। और तक्षक को सभी जानते थे। तक्षक बहुत विख्यात या कुख्यात था। वो ऐसा सर्प था कि बड़े बड़े राक्षस, यहां तक कि अघासुर इत्यादि जो कि सर्प की योनि में आए हुए थे, वो कालिया सभी वो डरते थे तक्षक से। तो यदि बाकी आप बड़े बड़े दिग्गजों को लो सर्प की योनि में, तो तक्षक उनका सरदार था। तो महाभारत में वर्णन है कि जब सबको पता लग गया कि हमारे सम्राट सात दिन में तक्षक के द्वारा मारे जाने वाले हैं, तो एक ऋषि मुनि, उनका नाम कश्यप, तो एक कश्यप ऋषि ये परीक्षित महाराज की ओर दौड़े दौड़े चले आ रहे थे, जैसे ही वो समाचार मिला। और उस जमाने में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा फास्ट क्विकली फैलता था, आजकल ये व्हाट्सएप से भी ज्यादा फास्ट। तो तुरंत जैसे ही पता लगा, कुछ घंटों में अब वहां पर परीक्षित महाराज तैयारी कर रहे हैं सब राज्य को छोड़कर गंगा के तट पर आने की, और ये कश्यप मुनि परीक्षित महाराज के राज्य की ओर अग्रसर। तो रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति ने कश्यप ऋषि को रोका, कहां दौड़े दौड़े चले जा रहे हो? मैंने कहा, अरे आपने सुना नहीं, हमारे महाराज परीक्षित, उनको ये शाप मिला है, तो तुम क्या करोगे? मेरे पास एक ऐसी सिद्धि है कि वो तक्षक यदि कुछ कर भी ले, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीडोट, एंटीवेनम होता ना, एंटीवेनम, तो उसका एंटीवेनम है मेरे पास, मेरे पास वो सिद्धि। तो ये बूढ़े व्यक्ति, इन्होंने कहा कि अच्छा तुम जानते हो मैं कौन हूं? तो कश्यप मुनि पूछते, कौन है भैया? मैं हूं तक्षक, मैं ही हूं तक्षक, और तुम व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हो यहां पर, मुझसे ज्यादा जहरीला इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं। और एक नमूना तक्षक ने पेश किया, बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष था। तक्षक ने केवल एक फूंक से उस विशाल बरगद के वृक्ष को राख कर दिया, केवल एक फूंक से। और आजकल के बरगद के वृक्ष नहीं, उस समय के बरगद के वृक्ष बहुत बड़े बड़े विषाण, एक फूंक से। और फिर तक्षक कच्छप मुनि से पूछते हैं, तो देख लिया, क्यों समय बर्बाद करते हो, जाओ। कच्छप मुनि ने कहा अच्छा हो गया, आपका काम हो गया। फिर कच्छप मुनि ने अपनी सिद्धि से उनके कमंडलू से आचमन लिया और कुछ बूंदे वो राख के ऊपर छिड़काई, फिर से वो बरगद का वृक्ष और जवान होकर खड़ा हो गया। तब तक्षक डर गया, तो तक्षक ने फिर कश्यप ऋषि से पूछा कि आप ठीक है, मैं मान गया कि आप में है कुछ दम है, मान गया, लेकिन बदले में कुछ आप अपेक्षा रखे हो? बोला हाँ क्यों नहीं भाई, महाराज की ऐसी सेवा करेंगे तो महाराज क्यों नहीं हमको कुछ ना कुछ देंगे। तो तक्षक कहता है जो भी महाराज देंगे उसका दुगना तिगना मैं दूंगा, ये मेरा वादा है, जाओ। तो कश्यप ऋषि में लोभ आ गया और वो लौट गए कि ठीक है भाई यहां पर ज्यादा दक्षिणा मिल रही है। तो परीक्षित महाराज के पास ये कथा इसलिए बताई गई है महाभारत में कि हालांकि यदि कश्यप मुनि आ भी जाते और वो आश्वासन दे भी देते कि मेरे पास है वो एंटी वेनम है तक्षक के अगेंस्ट, फिर भी परीक्षित महाराज का जो रिजॉल्व था श्रीमद् भागवत सुनने का, उनको तो केवल बहाना चाहिए था श्रीमद् भागवत सुनने का। देखिए क्या बहाना ढूंढा है भागवत सुनने के लिए, हम में से कोई है ऐसी हिम्मत रखता है कि भागवत सुनने के लिए हम हमारे ऊपर ऐसा श्राप ले लें? हम तो उल्टा भागवत से भागने के लिए बहाने ढूंढते हैं। तो ये परीक्षित महाराज इस श्लोक में बताया गया है, नैसाति दुस्सह क्षुण्माम त्यक्तोदम अपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। कि चार दिन बीत चुके थे और परीक्षित महाराज ने न तो कुछ खाया न कुछ पिया न सोए, और जितने वहां पर ऋषि मुनि बैठे थे उनका कोई काउंट नहीं था, अनगिनत बैठे हुए थे, सभी निर्जला कर रहे थे। और इससे समझ में आता है कि वो किसके विषय में सुनने के लिए इतना आतुर हैं, इतनी तपस्या इतना त्याग, तो वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण होगा, ये पॉइंट यहां पर हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, परीक्षित महाराज ने अपने प्रश्न पूछे कि बताइए भगवान श्री कृष्ण के वंश के विषय में बताइए, विस्तार से उनके विषय में बताइए। तो किस प्रकार से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से उत्तर अपेक्षित कर रहे थे, उन्होंने कहा एज इलैबोरेट एज पॉसिबल। एतत् अन्यच सर्वम मे मुने कृष्ण विचेष्टितम वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम। विस्तार से, यहां तक कि परीक्षित महाराज ने कह दिया सुखदेव गोस्वामी से कि मैं जो आपको प्रश्न पूछूंगा वो प्रश्नों के तो उत्तर आपको विस्तार में देने ही हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं, परंतु मैं जो प्रश्न न पूछ पाऊं तो उन प्रश्नों का भी उत्तर आप अपनी ओर से दे दीजिए। कितना एनकरेज कर रहे हैं स्पीकर को। तो सुखदेव गोस्वामी मानो पूछे कि भाई तुम जो प्रश्न न पूछ पाओ मुझे कैसे पता चलेगा, स्पीकर को कैसे पता चलेगा भाई जो श्रोता में कोई बैठा है उसका क्या प्रश्न है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं मुनि सत्तम, आप मुनि सत्तम हो, मुनियों में आप सबसे उत्तम हो, विद्वानों में सबसे विख्यात। विख्यात और सबसे निपुण दक्ष विद्वान हो, तो मैं जानता हूं कि आप समझ जाओगे कि मैं यदि कोई प्रश्न नहीं भी पूछ रहा तो आप समझ जाओगे कि उसका उत्तर आपकी ओर से आप दे दे। तो ये सब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को ये जन्म और कर्म की दिव्यता सुनाने से पहले उनको चौकन्ना कर रहे हैं। और कलयुग में हमारी स्थिति क्या होती है, हम चौकन्ना करते हैं जितनी जल्दी हो सके खत्म करना, और प्रश्न यदि पूछ भी लिया किसी ने, कई बार हमको कहा गया है कई मंदिरों में ऐसा कि अगर कोई गलती से हाथ भी ऊंचा करता है तो श्रीमद् भागवतम की जय बंद कर देना वहीं पे क्लास। तो यहां परीक्षित महाराज की आतुरता बताई गई एज इलैबोरेटली एज पॉसिबल। व्हाट वाज द नेचर ऑफ परीक्षित महाराज़'स क्वेश्चंस? सबसे पहला प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा कि ये जो बलराम जी, अब देखो ये क्या टेक्नोलॉजी दशम स्कंद में बताई गई है कि बलराम जी पहले देवकी के गर्भ में और देवकी के गर्भ से बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के अवतरण से पहले वो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुए। तो अब तक ये सुना है कि एक गर्भ से दो शिशु पैदा हो सकते, परंतु एक शिशु दो गर्भ से कैसे आ सकता है और उसी जीवन काल में? इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी उस समय की, ट्रांसफरेंस। ब्लूटूथ नहीं है, ब्लूटूथ ट्रांसफरेंस नहीं है। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि परीक्षित महाराज कितना ध्यान से बारीकी से जानना चाहते हैं बलराम जी का वूम ट्रांसफर कैसे। फिर भगवान श्री कृष्ण जो कि मथुरा में पैदा हुए तो वृंदावन क्यों तुरंत, वृंदावन मध्य रात्रि रातों रात वृंदावन क्यों ट्रांसफर उनको किया गया? फिर उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि वो कृष्ण उन्होंने अपने मामा का कत्ल क्यों कर दिया? कोई भांजा अपने मामा का बिना मतलब तो कत्ल नहीं करता, तो क्यों? और फिर वाई कृष्णा मैरिड 16,108 क्वींस। तो ये सब प्रश्न परीक्षित महाराज क्यों पूछ रहे हैं कि परीक्षित महाराज को कोई भगवान कृष्ण के कैरेक्टर के ऊपर डाउट नहीं है। परीक्षित महाराज ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आगे चलकर कोई डाउट करे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के ऊपर, दिव्यता के ऊपर, तो यहां पर आंसर रेडी होना चाहिए लिखित में, श्रीमद् भागवत में। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी और यहां पर बाकी जो बैठे हुए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान की रासलीला से। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान की रासलीला से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहां पर कलयुग में भौतिक संसार में लोगों को तकलीफ होती है, वैसे कोई लेना देना नहीं भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन रासलीला क्यों की? तो मुझे एक व्यक्ति कह रहे थे, उन्होंने मेरे को एक पता नहीं कोई बॉलीवुड का आइटम सॉन्ग है उसका एक लिरिक्स भेजा, तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। है ऐसा, शर्माइए मत, जानते हैं आप लोग, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो जिस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति के ऊपर ये गाना दर्शाया गया है, वो व्यक्ति का सही में कैरेक्टर ढीला है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ विस्तारित किया अपने आप को, और उनका उत्तरदायित्व लिया, तुम जो एक एक पिक्चरों में गाने गाते हो, तुम कौन से उन हीरोइनों का उत्तरदायित्व ले रहे हो? आज इस हीरोइन के साथ तुम पेड़ों के यहां वहां नाच रहे हो, कल दूसरे हीरोइन के साथ, फिर तीसरे हीरोइन के साथ, और यहां तक कि फिर वो हीरोइन इतनी बूढ़ी हो गई उसकी बेटी के साथ शुरू हो जाते हैं। है ना, सलमान खान उसके बारे में बताया गया कि वो फाइनली शादी करने गया, शादी नहीं हुई ना अभी उसकी, फाइनली गया शादी करने के लिए, तो जिस घर में गया तो जो बेटी की मां थी वो बेहोश हो गई। तो बेटी ने पूछा, मां आप क्यों बेहोश हो गए? बोले 20 साल पहले मुझे देखने आया था ये। और फिर वो गाना गाता है कि तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर गीला। भगवान ने उत्तर दायित्व लिया, उनके लिए अलग से 16,108 महल, और किसी का भी कंप्लेंट नहीं था। हमारे राधा गोविंद महाराज का एक प्रवचन, उसमें वो कह रहे थे, उनको अमेरिका में ये प्रश्न एक महिला पूछ रही, तो ये भगवान ने इतने 16,108 रानियों के साथ क्यों इतना विवाह, ये तो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य होता है, वो भौतिक स्तर पर नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों। तो फाइनली राधा गोविंद महाराज के, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपके आपके पिताजी से तो घर खर्च नहीं मांग रहे ना। तो ये सब को सही तरीके से हम समझें, इसलिए परीक्षित महाराज ये प्रश्न उनको पूछ रहे हैं। तो श्री कृष्ण जन्म की दिव्यता के 5 पहलू और उनसे संबंधित 5 प्रार्थनाएं, जिसकी चर्चा हम अब से शुरू करेंगे। तो कृष्ण जन्म ये 5 चीजों से समझा जा सकता है। यदि कोई भी पूछे कि कृष्ण जन्म की दिव्यता क्या है, तो जनन वर्णन वंदन सांत्वन और गमन। तो जो 4 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पहले 4 अध्याय, उसमें ये 5 चीजें बताई गई। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उसको कहा गया है जनन। फिर उसके पश्चात वर्णन, भगवान की सुंदरता का वर्णन, और भगवान के जन्म से पहले देवकी वसुदेव कंस के कारागृह में वो कितने सुंदर हो गए, उसका वर्णन, तो उनकी सुंदरता का वर्णन बताया गया है। तत्पश्चात देवताओं ने जो वंदन वंदना की, प्रार्थनाएं अर्पित की, और वसुदेव देव की उन्होंने जो प्रार्थनाएं अर्पित की भगवान के अवतरण के पश्चात, उसका वर्णन है। तत्पश्चात भगवान ने अपने माता पिता को सांत्वना दी। कौन सा बच्चा होगा पैदा होते ही अपने माता पिता को सांत्वना, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। भगवान सांत्वना दे रहे हैं, और इतना ही नहीं, तुरंत भगवान ने मथुरा से वृंदावन का उनका जो गमन है वो योजना बनाई। उसके पीछे जो मुख्य कारण था कि ब्रज में वो अपनी लीला करने शुरू करने वाले थे, तो गमन। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के जो 5 पहलू हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये दिव्य हैं। तो सबसे पहले जनन, भगवान के जन्म में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि केवल भगवान अब ये निर्णय ले लिए हैं, निश्चित कर लिए हैं कि वो अब जन्म लेने वाले हैं देवकी के 8वें पुत्र बनकर, और रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जब अपनी तिथि निश्चित कर ली, तो क्या क्या वरदान भगवान के इस जन्म के पीछे हम सबको प्राप्त हो सकते हैं। इससे समझ में आएगा कि भगवान का जन्म ये एक और कारण क्या है उनकी दिव्यता का, उनके जन्म की दिव्यता का। दैट कृष्णा अलोंग विथ हिज बर्थ ब्रिंग्स सिक्स बेनेडिक्शंस टू द ह्यूमन सोसाइटी, नॉट जस्ट टू द ह्यूमन सोसाइटी बट टू द एंटायर क्रिएशन। तो सबसे पहले है कृष्णाज बर्थ ब्रिंग्स ऑल ऑस्पिशियसनेस। सेकेंड, कृष्णाज बर्थ ब्रिंग्स क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। थर्ड, अर्थ प्रोवाइड्स अबंडेंटली व्हेन नोज दैट कृष्णा इज गोइंग टू अपीयर। रीइग्नाइट्स द फायर ऑफ भक्ति विद इन द हार्ट्स ऑफ कंडीशनड लिविंग एंटिटीज लाइक अस। फिफ्थ, गिव्स अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्विस। एंड सिक्स्थ, ब्रिंग्स कोऑपरेशन अमंगस्ट ऑल द लिविंग एंटिटीज बाय हिज बर्थ। अब देखिए, कौन है माइका लाल जो अपने जन्म के साथ ये छह वरदान प्रदान कर देता है। हम एक एक कर इसकी चर्चा करेंगे अब कि कैसे सुखदेव गोस्वामी इसकी व्याख्या कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में, हमारे अन्य आचार्यों ने इसके ऊपर क्या टीकाएं लिखी हैं, इसका तात्पर्य क्या है, एक एक जो वरदान भगवान के जनन। तो ध्यान में रखना, पांच पहलू में से पहला पहलू हम शुरू किए हैं, पहले पहलू के छह वरदान का पहला वरदान। साथ में है, टेक ऑफ लें। जनन ऑल ऑस्पिशियसनेस। अब श्रीमद् भागवत के ये तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है, अथ सर्व गुणोपेत कालह परम शोभन। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब तक जन्मे नहीं हैं, अब तक अवतीर्ण नहीं हुए हैं, परंतु जो नक्षत्र यारही एवा जन जन्मार्क्षम शांतरक्ष ग्रह तारकम, जितने ग्रह तारा मतलब तारे नक्षत्र इत्यादि ये सारे, उनके अंदर क्या हलचल। तो सुखदेव गोस्वामी वो कैमरा ले जा रहे हैं कहां, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में कैमरा ले जाकर हमको दिखा रहे हैं कि भगवान के जन्म के समय यदि आप नक्षत्रों को देखो, यदि आप काल को देखो, इन सब की गणना यदि करो तो समझ में आएगा कि कैसे कालह परम शोभना। इसलिए भगवान के जो हरिनाम है उसका गुणगान करते हुए एक वैष्णव गाते हैं, मधुरम मधुरे भ्योपि मंगले भ्योपि मंगलम पावनम पावने भ्योपि हरेर नाम एव केवलम। ये तो केवल भगवान का हरिनाम एव केवल क्या कर देता है, जो मधुर से मधुर वस्तु है वो उसका आस्वादन हमें कराता है। मंगलम मंगले भ्योपि, इस संसार में यदि कोई मंगल वस्तु है, यदि कोई किसी नक्षत्र को किसी के कुंडली को मंगल कह रहा है या किसी स्थान को किसी काल को मंगल कह रहा है, तो उन सभी मंगलमय वस्तुओं में यदि सर्वोपरि मंगलमय कोई है तो वो है भगवान का नाम। मंगले भ्योपि मंगलम पावने भ्योपि पावनम, यदि पावन वस्तुओं में जगहों में स्थान काल में कोई है तो वो है भगवान का नाम, भगवान का जन्म, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथा। तो अब हम इस श्लोक का ये जो महत्वपूर्ण लाइन है ये लेंगे, जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान के जन्म के समय कालह परम शोभना। बहुत सिंपल है समझना ये संस्कृत, कि परम तरीके से भगवान ने उस काल को सुशोभित किया अपने जन्म के द्वारा। अब देखिए हमारी स्थिति क्या होती है कि जब हमारी कुंडली कोई निकालता है तो कुंडली निकालकर फिर उसमें देखता है कि भाई आप इस नक्षत्र में ये ग्रह ये तारे ऐसे आप पैदा हुए, तो उस समय ये राहु यहाँ पर था, मंगल यहाँ था, गुरु यहाँ था, वो सब बताते ना, जो आपका हाउस कहाँ था, ये सब उसका घर कहाँ था, ये सब बताते। परंतु यहाँ पर भगवान अपने जन्म से सब बदलते हैं कि मुझे तुम लोग कहाँ चाहिए, वहां पर तुमको होना है। कौन है जो पैदा होने से पहले सबको बोल देगा, राहु शनु शनि केतु इत्यादि को बोलेगा कि मैं आ रहा हूं, सब लोग संभल जाओ। तो आप यदि देखो तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान जब पैदा हुए तो उस समय का जो काल वो अमंगल बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमंगल बताया गया। भगवान देखो कितना रेवोल्यूशनरी तरीके से जन्म लेते हैं। सबसे पहले थ्री मोस्ट इनऑस्पिशियस साइंस व्हेन कृष्णा वाज अबाउट टू अपीयर। सबसे पहला भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए दक्षिणायन। क्या होता है दक्षिणायन? उत्तरायण होता है एक, और एक होता है दक्षिणायन। भीष्म पितामह उत्तरायण के समय उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो बहुत शुभ माना जाता है उत्तरायण। उत्तरायण का अर्थ है कि जब सूर्य उत्तर दिशा में प्रवेश करता है अपनी यात्रा करते करते, तो वो है उत्तरायण। और दक्षिणायन है जब सूर्य वो दक्षिण दिशा में प्रवेश करता है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वो योगी जो अपना शरीर उत्तरायण के समय छोड़ता है तो सदगति को प्राप्त करता है, और वो व्यक्ति वो योगी जो दक्षिणायन के समय अपना शरीर छोड़ता है तो दुर्गति को प्राप्त होता है। तो यहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया काल परम शोभन, फिर कह रहे हैं कि भगवान का जो काल था वो दक्षिणायन के समय भगवान पैदा हुए। फर्स्ट मोस्ट इनऑस्पिशियस सिम्टम ऑफ एनीवन्स बर्थ। फिर वेनिंग फेज ऑफ द मून, पूर्ण चंद्र पूर्णिमा के पश्चात अब जब चंद्रमा घटना शुरू होता है उसको कहते हैं वेनिंग, और जब वो अमावस्या के बाद बढ़ना शुरू होता है तो उसको कहते हैं वैक्सिंग। तो भगवान अब जब चंद्रमा घट रहा है तो उसकी घटती हुई यात्रा के समय पैदा हुए। ये दूसरा अमंगल चिन्ह किसी के भी पैदा होने का, इनऑस्पिशियस साइन ऑफ एनीवन्स बर्थ, वेनिंग फेज ऑफ द मून। और तीसरा भगवान ने मध्य रात्रि चुना जन्म के लिए। तो यदि आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणना करो, और जो स्वयं भगवान ने गीता में कह दिया है कि जो योगी इन तीन अमंगल काल के समय अपना शरीर छोड़ता है या जन्म लेता है या जो भी कुछ करता है तो वो दुर्गति को प्राप्त होता है। तो कोई कहे ये भगवान जो गीता में ये सब कह दिए, खुद ऐसे अमंगल समय पैदा हुए, क्यों, क्या समझ में आ रहा है आपको? आप बोला अभी तो आप बोल रहे थे कि भगवान ने सारे नक्षत्र अपने अनुसार सेट किए, और अभी बोल रहे हो कि ये सारे अमंगल यहां पर एक साथ एक एक चिन्ह दिख रहे हैं। कि भगवान ये सिद्ध करना चाहते थे हैं कि यदि आपके जीवन में आपके सारे ग्रह तारे नक्षत्र यदि विपरीत दिशा में जा रहे हो आपके, परंतु यदि आपने भगवान श्री कृष्ण को आपके जीवन में अवतरित कराने के लिए निर्णय कर लिया तो भगवान जो हैं उस अमंगल काल को भी परम शोभन बना देंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान अवतरित हो गए लगता है। तो ये तीन चीजें, और इतना ही नहीं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के जन्म के समय तीन और अद्भुत चीजें देखने मिली, और वो कौन सी? कि रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी तारा और सूर्य, सूर्यदेव। अब ये तीन जो हैं, ये इनकी बनती नहीं आपस में, ये तीनों की, रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी तारा और सूर्यदेव, 36 का आंकड़ा है इनके बीच में, इनकी बनती नहीं है। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के जन्म के समय ये तीनों एसेंडेंस में, एक लाइन में, जैसे कि भगवान के स्वागत के लिए वहां पर उपस्थित खड़े। तो देखिए, जिन ग्रह तारकों का एक साथ जमता नहीं है, उनकी बनती नहीं है, उनको भगवान एक साथ लेकर आए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जब अवतरित हुए तो उस काल को परम शोभायमान बना दिया भगवान ने अपने स्वयं के प्रभाव के द्वारा। इस संसार में जब कोई जन्म लेता है तो इनके प्रभाव के द्वारा उसका जन्म होता है, या उसको जो भी कुछ प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता, इनके प्रभाव के द्वारा। परंतु भगवान जब अवतरित होते हैं तो कितने भी ये सारे तारे नक्षत्र सब अमंगल स्थिति में हो, भगवान के प्रभाव के द्वारा भगवान उसको परम शोभायमान बना देते हैं। इसलिए भगवान का जन्म दिव्य है। अब कलयुग में हमारी स्थिति क्या है? कलयुग में हमारी स्थिति बताई गई है, प्राण अल्प आयुष्य सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रुतः। पांच चीजें बताई गई है। एक तो आयु, अल्पायु है, कितना जी पाएंगे कलयुग के अंदर, आजकल तो कोई ठिकाना नहीं, कोई बोल नहीं सकता कि भाई मैं अगली दिवाली भी मनाऊंगा, अगली तो छोड़ दीजिए, आने वाली दिवाली होगी या दिवाला होगा, कुछ नहीं कह सकते। तो आयु अल्प है तो कोई कहे ठीक है, कम कितनी हमारी अल्प आयु है, उस कम अल्प आयु में हम अपने जीवन को संवार लें। तो यहां पर आगे कहा गया है कि कैसे संवारोगे, क्योंकि मंद, मंद का ट्रांसलेशन प्रभुपाद किए हैं श्लोक में, लेजी, आलसी। तो आयु कम है, उस कम आयु में भी आलस्य भरा पड़ा है, और विशेष रूप से आलस्य कूट कूट कर भरा पड़ा है आध्यात्म की जिज्ञासा करने हेतु। तो मंद का अर्थ है आलस्य, तो ये दूसरा अपशकुन हमारे साथ। उसके पश्चात सुमंद मतयो, कि यदि कोई अपना आलस्य के ऊपर भी विजय प्राप्त कर अपना उद्धार करने की कोशिश करने के लिए जाए तो उसे प्राप्त कौन होते कलयुग में? पथभ्रष्ट करने वाले तथा कथित ढोंगी गुरु साधु बाबा इत्यादि। तो सुमंद मतयो, मिसगाइडेड, ये तीसरा अपशकुन। उसके पश्चात मंद भाग्य, कि यदि वो स्वयं के भाग्य को भी खोल के देखे कि भाई मैं अपने भाग्य के बलबूते पर कुछ कर लूं तो उसका भाग्य भी मंद है। जैसे एक व्यक्ति ज्योतिष के पास गया और बड़े आतुरता से अपना भाग्य जानना चाहता था। ज्योतिषी ने उसको पूछा, तो तुम्हारी बीवी का नाम प्रीतो है? महाराज जी, आप तो अंतर्यामी है, और दो लड़कियां और एक लड़के है तुमको? हाँ महाराज जी, दंडवत हो, दंडवत आपका। और पिछले हफ्ते चावल खरीदे थे 1 किलो, उसके पिछले हफ्ते घासलेट खरीदा था, तो ये तो सिगरेट हो महाराज जी, आप तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं। तो उसने कहा अंतर्यामी कुछ नहीं, ये राशन कार्ड लेकर आया तू। अगली बार कुंडली लेकर आना। तो आजकल स्थिति ऐसी है कि कोई यदि अपने भाग्य को भी जानना चाहे तो गलती से राशन कार्ड ले जा रहे हैं, तो घासलेट तेल चावल दाल इत्यादि ये पता लग जाएगा बस। और फिर युपद्रुता, सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इसके ऊपर कलयुग के जीव जो हैं परेशान आत्मा। कौन से आत्मा है हम लोग? भगवान ने तो कह दिया है ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा एक है, जो ब्रह्म भूत उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वो प्रसन्न आत्मा कहलाता है। एक है जीवात्मा प्रसन्न आत्मा, परंतु कलयुग के लिए हम जीवों के लिए कौन सा श्लोक कहा जाएगा? परेशान आत्मा। तो ये सारे जो हमारे ऊपर तारों का ग्रहों का नक्षत्रों का जो प्रकोप है, और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम मुझे अपने जीवन में लाने के लिए स्वीकार कर रहे हो, शरणागत हो रहे हो, तो जैसे मैंने 5000 वर्ष पूर्व अवतरण के समय काल को परम शोभायमान कर दिया, उसी प्रकार से इस घोर कलयुग में भी यदि हम भगवान को अपने जीवन में अवतरित कराते हैं तो भगवान यह आश्वासन दे रहे हैं कि भगवान हमारे जीवन को भी परम शोभायमान कर देंगे। तो जो पहला वरदान जनन के द्वारा जो पहला वरदान भगवान दे रहे हैं वो क्या है? All auspiciousness, परम शोभायमान, भगवान का जन्म। तो पहली प्रार्थना हमारी अब क्या होनी चाहिए? भगवान के जन्म को समझते हुए हमारी पहली प्रार्थना भगवान से यही होनी चाहिए, मे लॉर्ड कृष्णास जन्म ब्रिंग अबाउट ऑल ऑस्पिशियसनेस इन आर लाइफ। तो हम एक एक वरदान के पीछे एक एक प्रार्थना हमको क्या करनी है, ताकि हम भगवान को न केवल तत्वतः जाने बल्कि हम हमारे जीवन को भी भगवान के मत के अनुसार जी। तो इसलिए आप लोग याद रखिए, हर एक वरदान के साथ साथ एक एक प्रार्थना हम अर्पित करेंगे इस श्लोक को समझने हेतु। तो अब चौथा कारण भगवान की दिव्यता का यहां पर सामने आ रहा है। 3 कारण हो चुके याद है ना आपको, अब चौथा कारण भगवान की दिव्यता का, विच चाइल्ड कैन ब्रिंग ऑल ऑस्पिशियसनेस बाय हिज जन्म। तो कोई यदि पूछे कि आप भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हो, क्यों भगवान श्री कृष्ण के जन्म को दिव्य कहते हो, तो पहले 3 कारण तो हमने समझ लिए ना कि नहीं? कोई बात नहीं, घर जाकर समझ ले। चौथा कारण यहां पर कि भगवान अपने जन्म के साथ शोभायमान कर देते। कौन है जो ये कर पाएगा? कोई देवता तक भी नहीं कर पाता तो साधारण जीव तो दूर की बात। तो ये चौथा कारण। तो अब दूसरा वरदान भगवान के जनन जन्म के संदर्भ में, दूसरा वरदान भगवान कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान के जन्म के समय भगवान ने सब कुछ साफ, हमारे नजरों के सामने सब कुछ साफ कर दिया, क्लैरिटी। और ये कैसे बताया गया कि जो बादल भगवान के जन्म से पहले वो घिरे हुए थे आकाश मंडल में, वो सारे बादल इतने ज्यादा वो काले बादल थे कि मानो दिन के समय रात्रि का अनुभव लोगों को हो रहा था, इतने काले बादल। और ऐसे जो घनघोर काले बादल जो हैं वो अमंगल का चिन्ह है। देखिए भगवान का स्वयं उनके उनकी जो कांति है वो वर्षा ऋतु के बादल के समान है, वो उस काले बादल के समान नहीं है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मींस व्हेन कृष्णा वाज अबाउट टू अपीयर देयर वर डार्क ओमिनस क्लाउड्स व्हिच वर कवरिंग द एंटायर अरीना ऑफ द स्काई एंड कृष्णाज अपीयरेंस क्लियर ऑल ऑफ दैट। तो इसलिए ये चिन्ह क्या क्या हैं? डार्कनेस, मिस आइडेंटिफिकेशन, डिप्रेशन, फियर, लैक ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन। तो ये सब चिन्ह हैं वो काले बादलों, वो किसका प्रतीक है काले बादल? ये सब का प्रतीक है हमारे जीवन में डिप्रेशन। आजकल देखो कि कितने लोग, जैसे मैं बता रहा था कि मैं कुछ समय पहले साइकेट्रिस्ट के साथ प्रोग्राम्स कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आजकल डिप्रेशन इतना ज्यादा हो गया है लोगों के अंदर कि कई ऐसे केसेस आते हैं कि वो डिप्रेस्ड हैं और वो जब साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए, या कोई अगर उनको सलाह देता है कि भाई आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, तो कोई अगर उनको सलाह भी देता है तो वो और डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरे अंदर डिप्रेशन है। फर्स्टली दे आर डिप्रेस्ड एंड देन व्हेन दे कम टू नो दैट दे आर डिप्रेस्ड दे बिकम मोर डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ देयर डिजीज ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड। आप लोग सुन के डिप्रेस हो गए, तरस आ रहा हो। राधा गोपीनाथ मंदिर में एक विद्यार्थी आया करता था, तो उसने बताया कि उसकी मां 18 साल से क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार, 18 साल से उसकी मां ने मुस्कुराया तक नहीं, चाहे कितना भी तुम बड़ा कॉमेडी शो उसके सामने दिखा दो, कोई जोक सुना दो, कुछ भी, कोई विनोद इत्यादि, नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 साल तक से उसने वो हंसी नहीं है। तो 18 साल के बाद फिर ये विद्यार्थी जब ये अब हरे कृष्णा मंदिर हमारे चौपाटी मंदिर में आना लगा, तो उसने शयन दर्शन के लिए अपनी माँ को बुलाया, चलो दर्शन कर लो, भगवान यहाँ पर बहुत सुंदर दिखते हैं, कीर्तन अच्छा होता है। तो 18 साल बाद पहली दफा जब राधा गोपीनाथ के शयन दर्शन को इस महिला ने अटेंड किया, तो शयन दर्शन के कीर्तन के समय उस महिला के अंदर एक ऐसा उत्साह और उल्लास जागृत हुआ कि 18 साल बाद उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। और वो फिर धीरे धीरे राधा गोपीनाथ मंदिर आना प्रारंभ की। ऐसे कितने केसेस जहां पर कलयुग में भक्तों ने, जो लोग अब आत्महत्या करने वाले थे, बस कुछ क्षण पहले उनको भगवान की भगवत गीता या भगवत गीता का ज्ञान दिया और आत्महत्या करने से बचा ली। भगवान की वाणी भगवत गीता, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो यदि हम देखें आजकल की स्थिति क्या है, स्माइलिंग फेसेस बट क्राइंग हार्ट्स। हां, जैसे हम कहते हैं ना, फोटो खिंचाते समय क्यों फोटोग्राफर को बोलना पड़ता है हंसो, मुस्कुराओ, बोलते हैं, बोलना पड़ता है ना, कम से कम तुम्हारा फोटो अब एल्बम में जाने वाला है, लोग देखने वाले हैं, तो जब देखेंगे 15-15, 20-20 साल तक जब देखेंगे तो कम से कम देखकर ये तो कहेंगे कि एक दिन तो कभी मुस्कुराया था ये। सो इट इज सेड दैट पीपल दे आर फुल ऑफ टीयर्स, देयर आईज आर फुल ऑफ टीयर्स, देयर हार्ट इज फुल ऑफ फियर्स, there is no hope anywhere near, but still they say cheers. और हां, ऐतिहासिक उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन जो स्वयं डिप्रेशन का शिकार हुए, अर्जुन जो स्वयं मिस आइडेंटिफिकेशन का शिकार हुए कि मैं कौन हूं, मैं यहां पर क्या करने आया हूं, मेरे हाथ से ये गांडी सरक रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी पहचान क्या है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम विशिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तम तथा कृपया आविष्ट और अश्रुपूर्ण, इतने ज्यादा आविष्ट हो गए अर्जुन कि उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। सोचिए, ऐसे योद्धा जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे अपने जमाने के, वो अर्जुन युद्ध भूमि में, रणभूमि में रो रहे हैं। अभी तक तो कोई मरा भी नहीं है, युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ है, और अर्जुन जैसे क्षत्रिय रो रहे हैं। सबके सामने 64 करोड़ योद्धा हैं, उनके सामने अर्जुन अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम। एक और घटना राधा गोपीनाथ की। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई शयन दर्शन, और वो बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन था। तो क्योंकि अब वो तो मंदिरों वगैरह में जाया नहीं करता था, लेकिन इसने बुलाया है तो चलो इसके खातिर तो मंदिर आ गया। शयन दर्शन में बैठा है, शयन दर्शन में आपने यदि देखा है राधा गोपीनाथ मंदिर में गौरनिताए हैं, राधा गोपीनाथ हैं और श्रीनाथ जी हैं, तीसरे ऑल्टर में श्रीनाथ जी हैं। तो देख रहा है कि कौन कौन है ये ऑल्टर में, इतने सारे शख्स, ऊपर कीर्तन हुआ तो उसकी नजर श्रीनाथ जी के ऊपर, समझ में नहीं आ रहा था उसको कि ये कौन है, एक हाथ ऊपर किए हुए, एक हाथ कमर पर है, थोड़े हट्टे खट्टे लग रहे हैं, कौन है। तो शयन दर्शन अटेंड किया, उसके पश्चात वो गया घर में सोया उस रात, और 3 दिन बाद वो वापस आया। हमारे जो गेस्ट रिसेप्शन में डिवोटी है उनको आकर कहता है कि पहले मुझे बताओ कि वो जो लास्ट तीसरे वाले जो आपके भगवान, वो कौन है। उन्होंने कहा वो श्रीनाथ जी हैं, थोड़ा इतिहास उनका बताया। तो एक गेस्ट रिसेप्शन के डिवोटी ने पूछा, क्यों पूछ रहे हैं आप। मैं 3 दिन पहले यहां पर शयन दर्शन में आया था, और उसके पश्चात जब मैं 3 दिन से सोने का प्रयास कर रहा हूं, ये आपके जो तीसरे भगवान है श्रीनाथ जी जिनको आप बोलते हो, मेरे सपने में आ रहे हैं 3 दिन से। ये सच्ची घटना है, वो मेरे सपने में आ रहे हैं, और सपने में आकर संस्कृत का कुछ श्लोक कह रहे हैं। अब मुझे तो संस्कृत आती जाती नहीं है, लेकिन मुझे इतना 3 दिन से वो सुना रहे हैं कि मुझे वो याद हो गया है कि क्या बोल रहे हैं। वो मैंने लिख कर लाया हूं, मैं वो लिख कर लाया कि वो संस्कृत में 3 दिन से मुझे क्या बोल रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने वो गेस्ट रिसेप्शन के डिवोटी को दिखाया, और डिवोटी को भी कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा कि हमारे एक ब्रह्मचारी हैं जो थोड़ा संस्कृत जानते हैं, उनको हम दिखाएंगे। तो जो ब्रह्मचारी को दिखाया, हमारे मदन गोपाल प्रभु, उनको दिखाया। वो आने वाले हैं अभी 2 हफ्ते में, यहां पर भी आने वाले हैं। बोलो बोलो, हरी बोल बोल दो, क्यों शर्मा रहे हैं आप, हरी बोल के लिए कंजूसी क्यों करनी, मुफ्त है मुफ्त है। तो मदन गोपाल प्रभु को वो, तो उन्होंने देखा तो उनको थोड़ा बहुत अर्थ उसका समझ में आया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके जो जान पहचान के जो संस्कृत के पंडित जो भारत में वो अलग अलग जगह पर स्थित है उनको उन्होंने कॉल किया, उनको बताया, उनको ईमेल किया कि ये आप इसका अर्थ बताओ। और पांचों पंडितों ने अलग अलग जगह से उन्होंने एक ही अर्थ उस संस्कृत श्लोक का पांचों ने दिया। जानना चाहेंगे? तो श्रीनाथ जी ये क्रिश्चियन लड़के के सपने में 3 दिन तक आते हुए कह रहे थे संस्कृत में कि इतने जन्म तूने इंद्रिय भोग में भोग विलास में बिता दिए, अब तू मेरी शरण में आया है, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। श्रीनाथ जी भगवान की। तो ये अब रेगुलरली मंदिर आना, इसको जब पता लगा कि भाई इतना पावरफुल इसका मीनिंग है, और डायरेक्टली प्रीचिंग किसने किया? कोई भगवद गीता कोर्स नहीं, कोई फॉलो अप कोर्स नहीं, कोई गेस्ट रिसेप्शन में बैठने वाला कोई प्रीचिंग नहीं किया, डायरेक्टली किसका काउंसिली बना? ये श्रीनाथ जी। और श्रीनाथ जी बहुत तगड़े हैं, उनको चैतन्य चरितामृत में बोला गया है महाभारी ठाकुर। तो डर भी गया था कि अगर मैं वो 3 दिन से बोल रहे हैं, अगर मैं नहीं करूं तो पता नहीं, बहुत तगड़े उनके हाथ दिखते हैं, महाभारी ठाकुर। तो ये व्यक्ति अब ये रेगुलरली आना प्रारंभ किया है, और ये व्यक्ति को पूरी 108 माला वो जम नहीं रही थी। तो इसने हमारे प्रीचर को पूछा कि आपकी बीड़ बैग में एक जो बाहर माला लटकती रहती है वो छोटी सी है, उस पे कर सकता हूं? तो ने कहा हाँ, उसमें भी कर सकते हो। तो 20 मणि उसमें जो साक्षी माला होती है उसमें 20 मणि, तो वो उसके ऊपर करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। एक बार उनको पूछा कि आप कितने माला करते हैं, किसी डिवोटी ने पूछा। रोज 25 करता हूं मैं। तो उसको भी एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिल रहा है कि 25 माला कर रहा है। तो देखिए लोगों के जीवन में किस प्रकार का कंफ्यूजन, डिप्रेशन, ग्लूम, मिसआइडेंटिफिकेशन, फियर, दीज आर ऑल क्लाउड्स विच आर कवरिंग their pure consciousness, and Krishna by his appearance he clears away all these dark ominous clouds and there is clarity of thoughts. Hum log yahan par jo is Hare Krishna mandir mein aana prarambh kiye, pehle kitna hamare andar sab jatilta thi, dwandh tha, hamari pehchan kya hai, aur yahan aane ke baad hum log jo itna मानते थे हमारे शरीर को ये वो, यहां आते ही फर्स्ट गीता कोर्स में इनिशियल यू आर नॉट दिस बॉडी, ये तो पूरा क्लीन बॉल्ड ही कर दिया पहली बॉल में, क्लीन बॉल्ड, यू आर नॉट दिस बॉडी। चलो आगे का डिस्कशन आत्मा के स्तर पर शुरू करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। प्रभुपाद जब वो वहां पर, उन्होंने वहां पर कोई ऐसे मरम पट्टी लगाकर प्रवचन नहीं दिए डायरेक्टली। चाहे तो अमरीकी हो, कितने भी सुंदर दिखते हो, अब सोचो अमेरिकन्स को, और वो भी टीनेजर्स थे ये लोग, सब इतने सुंदर दिखने वाले, उनको सीधा प्रभुपाद उनके चेहरे पर कह रहे हैं यू आर नॉट दिस ब्यूटिफुल स्किन, यू आर नॉट दिस ब्यूटिफुल फेस, यू आर नॉट दिस ब्यूटिफुल बॉडी, द रियल ब्यूटी इज योर सोल। दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो जो दूसरा वरदान है जनन का, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, तो अब इसमें जो सेकंड प्रेयर है वो हमको क्या अर्पित करनी है? मे द क्लाउड ऑफ कंफ्यूजन बी डिसिपेटेड बाय द क्लियर वर्ड्स ऑफ कृष्णा। तो तो हमें इस श्लोक को समझते हुए, भगवान के जन्म की दिव्यता को समझते हुए, भगवान के पांच पहलुओं में से जो जनन पहलू है, जनन पहलू का जो दूसरा वरदान है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कहां से प्राप्त होगा? जब हम ये प्रार्थना में अपना जीवन जिएंगे, मे द क्लाउड ऑफ कंफ्यूजन बी डिसिपेटेड बाय द क्लियर वर्ड्स ऑफ कृष्णा। तो अब पांचवा कारण भगवान के जन्म की दिव्यता का क्या बन जाता है? विच चाइल्ड कैन ब्रिंग क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बाय हिज जन्म। उल्टा शास्त्रों में हमारे जन्म के विषय में कहा गया है अबोध जात। हम पैदा होते हैं अज्ञान में, बड़े होते हैं अज्ञान में, और यदि भगवान और भक्तों की कृपा न हो तो मर भी जाते हैं अज्ञान में। फिर से कैरीड फॉरवर्ड, हमारा जो बैलेंस शीट है वहां से क्या कैरी फॉरवर्ड होता है? पहले का अज्ञान और अब नया अज्ञान, ये चलता रहता। इसलिए भगवान का जन्म दिव्य है ये पांचवे कारण के वजह से। तीसरा वरदान अबंडेंस इन अर्थ रिसोर्सेस। अब ये देखिए, आजकल इतनी चर्चा चलती है पर्यावरण के विषय में, इकोलॉजी, कि हमने, मनुष्यों ने क्या बना दिया है इस पृथ्वी को। परंतु भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला कर रहे थे तो भूमि देवी वो इतना उत्साहित थी उस समय, और इतना प्रसन्न चित्त थी भूमि देवी, कि भूमि देवी निकाल निकाल कर जो रिसोर्सेज हैं वो भगवान और भगवान के भक्त और जो भगवान के पदचिन्हों पर चल रहे हैं उनको प्रदान कर 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 देती थी। और वही भूमि देवी भगवान के अवतरण के पहले वो सब कुछ अपने अंदर छिपाए हुए थी, निकाल कर नहीं दे रही थी, क्योंकि राक्षसों का प्रकोप था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय भूमि देवी जो नदियां सरोवर इत्यादि वो आप्लान्वित थे ऐसे शुद्ध मधुर शीतल जल से, उसमें जो कमल पुष्प खिल रहे थे और जो बाकी पशु पक्षी और कृषि इत्यादि सब जगह पर भूमि देवी वो भली भांति सबको अपने रिसोर्सेस प्रदान कर कर दे रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो गीता में कहे हैं कि जो मेरे भजन कीर्तन में लगता है, अनन्यस चिंतयंतो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कह दिए हैं कि जो मेरे अनन्य, या अर्थात आज के श्लोक में जो मुझे तत्वतः जान लेता है मेरे जन्म और मेरे कर्मों को, भगवान कहते हैं कि आई मेंटेन एंड आई प्रोवाइड। तो भगवान ने पूरी तैयारी कर कर रख ली है, हमें हमारी तरफ से क्या करना है? अनन्यस चिंतयंतो माम। श्रील प्रभुपाद अपनी गीता में एक बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो पावरफुल दैट इट विल ड्रैग द प्रैक्टिशनर टू परफेक्शन इवन इफ ही डजंट वॉन्ट। If he simply unwillingly engages in Krishna's service, the process will drag the practitioner to perfection. बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ये है पावर भगवान के जन्म की दिव्यता का। परंतु हम देखते हैं कि इसका विपरीत, जब हम भगवान के शब्दों को, भगवान की वाणी को, भगवान के आदेशों को अपने जीवन में नहीं पालन करते, इसलिए श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश जाकर उन्होंने ये संस्कृति दी, श्रील प्रभुपाद डिंट जस्ट प्रीच, श्रील प्रभुपाद डिंट जस्ट इंस्टॉल डीटी, श्रील प्रभुपाद इंस्टॉल्ड धाम्स विथ कल्चर। इसलिए अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो पर्यावरण के लिए प्रभुपाद ने जो हमको जीवन शैली दी है, अगर इसका पालन करें, केवल चार नियम का पालन कर लें सारे मनुष्य, तो ये पर्यावरण कितना शुद्ध हो जाएगा। केवल चार नियम पालन कर लें, बाकी तो छोड़ दीजिए, पर्यावरण कितना शुद्ध हो जाएगा। तो हम आपको आज तीन वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं, प्रथम वीडियो है कि इसमें एक कार्टून है, इसमें बताया गया है कि मनुष्य जब आया, आधुनिक मॉडर्न मैन ने क्या किया अपने तथाकथित अवतरण के पश्चात, भगवान क्या करते हैं और मनुष्य क्या करता है, आधुनिक मनुष्य वो क्या करता है। फिर उसके पश्चात हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि एक 12 साल की लड़की यूएन समिट में जाती है ब्राजील में, और वहां पर वो एक स्पीच देती है, तो स्पीच उसको टाइटल दिया गया है द गर्ल हु साइलेंस्ड द वर्ल्ड। और फिर हम फाइनली आपको दिखाएंगे एक बहुत ही विशेष वीडियो जो हम बाद में बताएंगे। लाइट्स Thank you.
Hello, I'm Severin Suzuki speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct, every day vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child, and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up in a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians, but really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong, in fact, 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, buy and throw away, buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. In Canada, we live the privileged life, with plenty of food, water, and shelter. We have watches, bicycles, computers, and television sets. The list could go on for 2 days. 2 days ago, here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection. If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born, that I could be one of those children living in the favelas of Rio. I could be a child starving in Somalia, or a victim of war in the Middle East, or a beggar in India. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties. What a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us to not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out and do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything's going to be all right. It's not the end of the world. And we're doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you.
Govardhan Eco Village is about 2.5 hours northeast of Mumbai in a very beautiful rural village area of Maharashtra. There's a very holy place in India which is considered most sacred to devotees of Krishna. It's called Vrindavan. And in that Vrindavan is a mountain named Govardhan, which represents environmental, ecological harmony with spiritual principles.
This place is very special. Certainly it's unique in India and perhaps unique in the whole world. It's like a retreat center. It's like a spa. It's like an ashram. It's a place that's designed as an experiment to merge environmentalism, animal rights, and bhakti, spirituality, together, and it's working.
Come dance.
The amenities here are of a whole nother caliber. People, when they think of the words India and ashram, they think of harsh and rough living. From the Ayurvedic clinic, which not only gives treatments but also has an Ayurvedic doctor who helps prescribe something that is specific for your dosha. The atmosphere that is created by the founder, Radhanath Swami Maharaj, and the atmosphere that is created by the devotees who work here is palpable. You can feel it in the air.
Originally, I was from Chicago. When I was 19 years old, in 1970, I wanted to try to broaden my outlook of life. So I went on a journey. Ultimately, I hitchhiked from London to the Himalayas in India. And as I was traveling, I came to realize that the real social and environmental problems of the world are due to a spiritual crisis. A crisis in what we consider is actually meaningful and fulfilling in our life.
Radhanath Swami is a passionate person. The best passion is compassion, and he has an ample amount of that. And that type of passion is contagious.
Becoming here and helping to, doing the seva, the service, helping with the cows, helping with to weave mats, helping with make pottery. It's actually fun. It's very simple lifestyle, and I think a lot of us crave that on different levels.
And it's sort of programmed into our culture that you look for recognition. You need it. For me, being here, I see it's far more powerful to be humble.
It was easy to complain about the tiny inconveniences that come with a New York City apartment. Oh, it's not big enough. Oh, the water pressure isn't great enough. When you live in a house that you see built from the ground up, every step along the way, it's very special.
When people come here, we're trying to inspire an educational, experiential alternative of a fulfilling, meaningful, sustainable, healthy life.
Apart from these jasmine flowers which you're seeing, he grows a lot of these lady fingers, okra. Yeah. So we network with all these farmers so that we purchase them in our kitchen and use them.
Can we get these to the kitchen? We can give them to the, yeah.
And the inspiration of this project, Srila Prabhupada, he called this transformation simple living and high thinking.
We get 3,000 millimeters of rain annually. So the rainwater hits against those mountains, the Sahyadri mountain ranges, and flows down and collects here. And it is sufficient water for us to irrigate our fields for up to 6 to 7 months every year. The majority of India's population, which is 1.2 billion, lives in the villages. So one of the very important requirements to develop a village is how can water be conserved.
The process begins here. As you can see, the raw sewage is falling and there are some screens. The first chamber is called screen chamber, where we are trying to separate floating solids. This is the raw water where we began, and this is the treated water.
The uniqueness of this place comes from the fact that every waste is becoming a precious resource. That cow dung becomes a fertilizer for earth. He needs fire or energy for cooking his food, and therefore all of the cow dung we utilize for biogas plant. We need to make houses, so we use the same earth, and we have created 250,000 bricks. We call this a symbiotic recycling model. Flushing your toilet, you are contributing to the growth of a papaya. You are contributing to the growth of flowers.
One of the greatest management gurus says that the greatest management challenge of the 21st century is managing oneself.
Many corporate heads are having seminars and retreats here, and they also see alternative ways by which they could focus their own corporations and feel a real sense of responsibility to humanity.
The thing I'm most compelled to do when I get home is really a seva. It's service. It gets us out of being so self-absorbed.
I always had too much. And now I want to have a simple life, like here. I love simple life, and my goal is to make a simple life in my home.
And if we just refocus our energies with these values, we could transform the world.
Every step that I take, you dance for me.
It's truly a miraculous, magical place on this planet.
Hare Krishna. तो आपने देखा यहाँ वाड़ा में ही पासी में यहाँ से केवल 3 घंटे दूर है, कितने गए हैं यहाँ पर हमारे इको विलेज में? तो आपने एक नमूना देखा, जो नए गए हैं वो जाकर देख सकते हैं अपने आंखों से कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी को जब पालन करते हैं तो कैसे पृथ्वी खुशहाल होती है। तो कल्पना कीजिए कि यहाँ केवल 70 एकड़ में गोवर्धन इको विलेज जो वाणा में हमने शुरू किया है, वहां पर भगवान के आदेशों के अनुसार जो संस्कृति का पालन किया जा रहा है तो उसे नेशनल अवार्ड मिला है। इको फ्रेंडली विलेज के तौर पर उसको नेशनल अवार्ड मिला है। तो कल्पना कीजिए कि जब भगवान 5000 वर्ष पूर्व स्वयं अवतरित हुए तो भगवान ने पृथ्वी देवी के अंदर क्या खुशहाली लाई होगी। ये केवल एक हमारे 5-10 मिनट के वीडियो से हम उसको अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हम ये दिखाना चाह रहे थे कि आज का आधुनिक समाज पृथ्वी को क्या कर रहा है, और उसका मूलभूत कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी का पालन न करना, उनके आदेशों का उल्लंघन करना, जिसके वजह से ये सब कुछ देखा जा रहा है। और यदि किसी एक जगह पर भगवान की संस्कृति का, उनकी वाणी का, उनके आदेशों का पालन होता है तो उसका परिणाम क्या होता है। तो इसलिए छठा कारण भगवान के जन्म की दिव्यता का, विच चाइल्ड कैन ब्रिंग अबंडेंट रिसोर्सेस टू अर्थ जस्ट बाय हिज जन्म। एंड वी सी कृष्णा डिड दैट व्हेन ही अपीयर्ड। सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन्स दैट द एंटायर प्लैनेट अर्थ abundantly, profusely supplied all of her resources for mankind. तो अंत में हमने अब तक 6 कारण इनकी चर्चा कर ली है। Why Krishna's Janma is Divya? The first reason we have already discussed, which child is born with a mission to save planet Earth. Second, which child chooses his parents even before his birth. Great personalities like Parikshit and Shukdev glorify Krishna's Janma, the third reason. Fourth reason, which child brings all auspiciousness with his birth. Fifth reason, which child clears all confusion by his birth. And sixth, we discussed which child provides abundant resources to earth by his birth. Bolo Bhagwan Sri Krishna ki
Jai.
To abhi hamare bhag 3 mein hum aur विभिन्न कारण भगवान के जन्म की दिव्यता का करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की।